अयांश ने आरवी की दोनों कलाइयां अपने हाथों में पकड़ी। जानता हूं वो तुम्हारे विश्वास के साथ भी खेला है, वो किसी का सगा नहीं था। तुम्हें तो क्या बोलूं मैं, सालों से साथ था उसके तो ना जान पाया, तुम्हें तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। तो आप फिर मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है मैं उसके साथ मिली हुई थी? आपकी नफरत, आपकी नाराजगी सही नहीं है मिस्टर मेहरा, आरवी ने अयांश की आंखों में झांकते हुए कहा। पर अयांश कुछ न बोला, बस खामोशी से खड़ा रहा। आरवी फिर चिल्लाते हुए बोली, बोलिए, जवाब दीजिए, आप सोच भी कैसे सकते हैं मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? उस सक्षम का साथ दिया है मैंने जिसने मुझे भी धोखा ही दिया है। तभी अयांश ने आरवी की कलाई पकड़, उससे अपनी शर्ट छुड़ा ली और कलाई पर पकड़ कसते हुए बोला, तड़पती रह जाओगी तुम, कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय मेरी नफरत के। आरवी ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मिस्टर मेहरा, नहीं, जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं उसका कसूरवार ठहराकर आप मुझसे नफरत नहीं कर सकते हैं। गेट आउट फ्रॉम माई रूम, अयांश ने दरवाजे की ओर हाथ करते हुए कहा। पर आरवी को अभी भी पूछते सवाल करते देख अयांश का गुस्सा बढ़ गया और उसने उसी वक्त उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद दरवाजा बंद कर दरवाजे पर जोर से अपना हाथ मारते हुए कहा, जस्ट आई हेट यू, रियली हेट यू। अगली सुबह अयांश जैसे ही उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा आरवी के कमरे से आवाज आ रही थी। अयांश उस तरफ गया तो देखा अंदर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। दरवाजा बाहर से लॉक था। ये देख अयांश ने फट से दरवाजा अनलॉक किया कि तभी नर्स बाहर आई और अयांश को देख बोली, सर पता नहीं दरवाजा कैसे बंद हो गया और मैम भी अंदर नहीं है, थोड़ा घबराते हुए। मैं सोई कब मुझे तो याद भी नहीं, सोचते हुए। मैंने कंबल भी ओढ़ रखा था पर वो तो मैम ओढ़कर सो रही थी, थोड़ा डरकर अयांश की ओर देखते हुए। अयांश रूम में झांकते हुए बोला, वो अंदर नहीं है? तो नर्स ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं है, मैं उठी तब मैम थी ही नहीं, ना बेड पर ना बाथरूम में, सहमी सी आवाज में। ओके, मैं देखता हूँ, आप जाकर मैम के लिए ब्रेकफास्ट बनवाइए, अयांश साइड होते हुए बोला। तो नर्स ओके सर कहकर वहां से नीचे चली गई। अयांश ने रेलिंग के पास आकर नीचे झांक कर देखा पर आरवी उसे नीचे न दिखी। तभी अयांश की नज़र दाईं तरफ सामने लगे झूले पर पड़ी जिस पर आरवी उसे दिखाई दी। अयांश उस तरफ आया तो देखा झूले पर आरवी बैठी थी और बैठे बैठे ही सो रही थी। आरवी के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। कुछ पल वहीं खड़ा अयांश आरवी को निहारता रहा। फिर अयांश आरवी के पास आया और माथे पर आए उसके बाल हटाते हुए मन ही मन खुद से बोला, कितना मुश्किल होता है ना अपनी पसंद के शख्स को नापसंद करना, उससे नफरत करना। तुम्हारा ये मासूम चेहरा देख लगता ही नहीं कि कोई तुमसे नफरत कर सकता है, पर तुम्हारा सच सामने आए तो सिवाय नफरत के तुम्हें कोई कुछ दे भी नहीं सकता। तभी अयांश ने अपनी आंखें मींचकर आह भरी और आरवी को झूले से उठाकर लाकर उसके बेड पर लिटा दिया। देर रात सोने की वजह से वो गहरी नींद में थी और कुछ दवाइयों का असर था। अयांश उसे कमरे में लाया है इस बात का आरवी को पता भी नहीं चल रहा था। बेड पर लिटाकर अयांश उसकी तरफ देख बोला, कमरे से निकाला मैंने ये नहीं कि अपने कमरे में आकर आराम से सो जाए, उल्टा जिसे केयर के लिए रखा है उसकी ही केयर करने में लगा है, उसे सुलाकर कंबल उड़ाकर रूम तक लॉक कर दिया। इतना कह अयांश गर्दन झुकाकर वहां से चला गया। अयांश वॉकिंग करके आया तो देखा दिनकर जी हॉल में सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पेपर के फ्रंट पेज पर अयांश की विनित के साथ फोटो छपी हुई थी। अयांश का नाम टॉक में देख वो फूले ना समा रहे थे। तभी अयांश उनके सामने आकर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग दादू। दिनकर जी ने एक नज़र उसे देखा और फिर अखबार पढ़ने लगे। तो अयांश फिर बोला, गुड मॉर्निंग नहीं कहना मत कीजिए, आपकी खुशी का राजी जाहिर कर दीजिए, बड़े खुश नजर आ रहे हैं सुबह सुबह। दिनकर जी ने न्यूज़पेपर समेट कर टेबल पर रखा और बोले, आरवी ठीक हो रही है, खुश तो होंगे ना, कल से उसकी हेल्थ बेहतर है, पहले जितना चोट दर्द भी नहीं दे रही है, ज्यादा वक्त ना लगा उसे ठीक होने में, अच्छी बात है ना, सिर्फ 2-3 दिन में स्वास्थ्य में सुधार हो गया। वैसे सही ही सुना है, मन मजबूत रखे तो इंसान आधा ठीक तो तभी हो जाता है। कल सोने से पहले मिला तो कह रही थी, देखना कल हम आपको बिल्कुल ठीक मिलेंगे, मुस्कुराते हुए। अयांश बोला, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक कैसे ना होगी, और इतनी भी उसे चोट ना लगी थी जो महीनों लगते उसे, बस 2 दिन और फिर तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़नी। वैसे इस खुशी की वजह सिर्फ वही है या कुछ और भी? न्यूज़पेपर में खुद की फोटो की ओर देखते हुए दिनकर जी इधर उधर देखते हुए बोले, और क्या वजह हो सकती है? ये सुनते ही अयांश मुस्कुराया और फट से उठकर दिनकर जी के पास जा बैठा और उसी वक्त उनके सीने से लग गया। उनके सीने से लगते ही दिनकर जी ने भी उस पर अपनी बाहें कस ली। कुछ पल दोनों एक दूसरे से खामोशी से लिपटे रहे। तभी अयांश उनसे अलग हुआ और दिनकर जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आपको नाराज रहना नहीं आता, फिर क्यों कोशिश करते हैं आप दादू? तभी दिनकर जी सोफे से उठकर गए और बिन कुछ बोले बाहर की तरफ बढ़ गए और राधे को आवाज देते हुए बोले, राधे तुम नाश्ता लगाओ, हम जरा बाहर टहल कर आते हैं थोड़ा। अयांश उनको जाते देख बोला, ये सही है, चुप रहकर जताते हैं कि नाराज हूँ। आप बात बेशक ना करें मुझसे दादू, पर मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत खुश हैं, न्यूज़पेपर की ओर देखते हुए, और मेरे लिए आपकी खुशी मैटर करती है दादू। वैसे चुप रहते भी आप अच्छे ही लगते हैं, कम से कम उस आरवी के चक्कर में मुझसे तो नहीं लड़ते। इतना कह अयांश उठकर अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद दिनकर जी और अयांश ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। राधे उन्हें खाना दे रहा था, तभी नर्स नीचे आई और राधे से बोली, मैम का खाना। राधे टेबल पर रखी प्लेट की ओर देखते हुए बोला, खाना तो रेडी है, पोहे बने हैं उनके लिए, जैसे आपने बोला वैसे ही। नर्स बोली, लाइए मैं ले जाती हूँ। दिनकर जी बोले, ले जाती हूँ मतलब वो नीचे नहीं आएगी? नर्स नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं सर, उन्होंने कहा मेरा नाश्ता यहीं ला दो। दिनकर जी परेशान होते हुए बोले, तबीयत तो ठीक है ना उसकी, कहीं चोट दर्द तो नहीं दे रही? नर्स बोली, नहीं सर, वो ठीक है और अब तो वो चलने भी लगी है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे खुद चलकर नीचे भी आ सकती है, पर मैम को आज कमरे में ही खाना खाना है, वो नीचे नहीं आना चाहती, कहकर नर्स आरवी का खाना लेकर ऊपर चली गई। ये देख राधे और दिनकर जी दोनों ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। तभी दिनकर जी अयांश की ओर देखने कुछ कहने को हुए कि अयांश बोल पड़ा, मैंने कुछ नहीं दादू, ना कहा ना मना किया नीचे आने को, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही है, कंधे उचकाते हुए। दिनकर जी अपना नाश्ता करते हुए बोले, कल तक खुद नीचे आने को तैयार थी जबकि आ नहीं सकती थी, और आज आ सकती है फिर भी ना आई, कुछ तो हुआ ही होगा ना। अयांश कुछ ना बोला और अपनी कॉफी लेकर ऊपर चला गया। सीढ़ियां चढ़ते आरवी के कमरे की तरफ देखते हुए कहता है, अब कौन सा नाटक कर रही है, कहीं मैं बदला ना लूं, वैसा कुछ करके इसलिए तो नीचे नहीं आ रही है, वैसे सही है कमरे में रहेगी, वरना सामने आकर अपनी बातों से मेरा खून ही जलाएगी। आरवी ने थोड़ा सा खाना खाया और दवाई खाकर फिर लेट गई। नर्स उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? लग तो नहीं रही, आप इतनी चुप क्यों हैं? और आज तो पोहे दिए, दलिया खिचड़ी नहीं, फिर भी कुछ नहीं कहा। तभी आरवी उठ बैठी और बोली, आपने वो वाली स्लीपिंग पिल्स तो दी ही नहीं।
नर्स टेबल की ओर देखते हुए बोली, ये वाली, ये तो नींद ना आए तब के लिए है और पेन किलर है, आप अब सोएगी थोड़ी, आपको दर्द हो रहा है क्या मैम जो आप ये दवा लेना चाहती हैं? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, आरवी खोई सी बोली। क्या आपने बताया क्यों नहीं? सुबह से देखकर ही लग रहा है कि आप ठीक नहीं, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, कहते हुए नर्स टेबल से अपना फोन लेने बढ़ी। तभी आरवी ने टेबल से हाथ बढ़ाकर दवाई और पानी उठाया और दवा लेकर गिलास वापस रख कंबल ओढ़ सोते हुए बोली, मुझे डॉक्टर की नहीं रेस्ट की जरूरत है, मैं सो रही हूँ, आप जाकर नाश्ता कर लीजिए। ये सुन नर्स कॉल करते करते रुक गई और आरवी की ओर देख खुद से बोली, हुआ क्या है इनको, डॉक्टर को बुलाऊं या मिस्टर मेहरा को कहूं कुछ? नहीं, इनको रेस्ट करने देती हूँ, उठ जाएगी तब पूछ लूंगी डॉक्टर बुलाऊं या नहीं, अभी सोने देती हूँ, कह नर्स कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही बाहर निकल नीचे जाने को हुई कि तभी अयांश ऑफिस जाने के लिए अपने रूम से निकला और नर्स से रुककर पूछता है, खाना खाया? जी सर, और अभी सो रही है मैम, नर्स बोली। ओके, सोने दो, वैसे भी रात भर ठीक से सोई नहीं, ध्यान रखना, कहकर अयांश वहां से चला गया। तभी नर्स ने अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाई, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैम रात भर कमरे में ना थी तभी नींद आ रही है सुबह सुबह उनको, अच्छा है सर ने बता दिया, वरना मैं यूं ही परेशान होती रहती, सो लेंगी मैम तो मूड भी ठीक हो जाएगा इनका, दवा भी इसीलिए ली होगी ताकि अच्छे से सो पाए। कमरे की ओर देखते हुए, देखते देखते दो दिन बीत गए, आरवी अपने कमरे से भी बाहर ना आती है, दिनकर जी बोलते हैं या बुलाते हैं तो थोड़ी देर नीचे जाकर वापस कमरे में लौट आती, कभी खामोशी से खिड़की के पास खड़ी रहती तो कभी चुपचाप बस सोती ही रहती। उसका ये बदलाव सब देख रहे थे, वो खाना तक अपने कमरे में खा रही थी, किसी चीज को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, यहाँ तक कि अयांश सामने आता तो अपना रास्ता बदल लेती या मुंह फेर लेती, अयांश कुछ बोलता तो कोई जवाब न देती ना कुछ कहती। अयांश आरवी के कमरे में आया, उसने आरवी से पहले जैसे ही रूडली बात की, बहुत कुछ कहा, थोड़ा परेशान करने की कोशिश की, पर आरवी ने पहले जैसे कोई रिएक्ट ना किया। उसे ना बोलता देख अयांश भी उसके कमरे से चला जाता है। नर्स, राधे, दिनकर जी सब आरवी की चुप्पी से परेशान हो रही थे, यहाँ तक कि अयांश को भी आरवी की खामोशी बहुत खल रही थी। आरवी की चुप्पी अयांश को चुभ रही थी, बेचैन कर रही थी, क्योंकि पहली बार था ये ऐसा जब वो इतनी चुप थी, सबको आदत थी, सबने उसे बोलते देखा था जब से मिली थी तब से। अयांश को बिल्कुल अच्छा न लग रहा था आरवी का खामोश रहना, उसने कोशिश भी की आरवी की चुप्पी तोड़ने की, पर कुछ ना हुआ, पिछले दो दिन से किसी को कुछ बताना तो दूर, वो किसी से बात तक नहीं कर रही थी। क्रमशः